यशया अध्याय दो, यहां यशया का परिचय पुनः दिया जा रहा है। यशया अध्याय दो पद एक, आमोस के पुत्र यशया का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अब परमेश्वर यशया को भविष्य की सैर कराता है। यशया अध्याय दो पद दो, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। यशया इस विषादपूर्ण वातावरण से निकलकर यीशु के द्वितीय आगमन और पृथ्वी पर उसके राज्य की स्थापना के समय में प्रवेश करता है। यहूदी यीशु को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उन्होंने उसे छेदा था। वे उसे तब पहचान लेंगे और रोएंगे। वे उसे ना पहचानने और अपने अंधेपन पर सार्वजनिक विलाप करेंगे। तब यीशु यरूशलेम के पर्वतों पर अपना राज्य स्थापित करेगा। प्रथा के अनुसार उनका मानना यह है कि मसीहा का सिंहासन सियोन पर्वत पर होगा। अब भविष्यवाणी प्रभु के राज्य की ओर बढ़ती है। उसके राज्य में समस्त जातियां यरूशलेम आएंगी और उसे दंडवत करेंगी। यशया अध्याय दो पद तीन, और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। बाइबल अन्य स्थान पर ये कहती है कि पृथ्वी के राजा यरूशलेम आएंगे और प्रभु को अपनी अपनी भेंट चढ़ाएंगे और वहां उत्सव मनाएंगे। ये राजा कौन है जिनका यहां उल्लेख किया जा रहा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय एक में लिखा है, वो जिसने हमें प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया और हमें हमारे परमेश्वर के निमित्त राजा और याजक बनाया, अर्थात हम उसके साथ राज करेंगे। उसने कलीसिया से कहा, वह जो विजय पाता है उसे मैं उसी प्रकार अपने राज्य में अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा जिस प्रकार मैं अपने पिता के राज्य के सिंहासन पर बैठ गया हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय पांच में, जब मेमना सिंहासन पर बैठने वाले के दैने हाथ से पुस्तक लेता है और प्रत्येक वृद्ध धूप से भरे स्वर्ण पात्र हाथ में लिए हुए थे, ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और वे ये कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरे कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वास्तव में ये वचन हमारे बारे में है, यूं कह रहा है, और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्या ये उत्साहजनक नहीं होगा जब हम यरूशलेम जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर उनकी शिक्षाओं को सुनेंगे? मेरे लिए तो ये बहुत उत्साहजनक बात है। यरूशलेम जाकर प्रेम, अनुग्रह और भलाई के विषय में परमेश्वर का वचन सुनने का विचार यहां पर लिखित है। बहुत ही आनंददायक और उत्साहजनक बात है। वहां पर वो हमें अपने मार्गों के बारे में सिखाएंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यशया अध्याय 2:4-5। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएंगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। कहने का अर्थ यह है कि उस महिमा के युग में जब यीशु राज करेगा, शांति सर्वव्यापी होगी और जितना व्यय सेनाओं के रख रखाव में आता है सब कृषि के विकास में काम आएगा। तलवारें पिघलाकर हल बनाए जाएंगे और भालों से हसिया। इन दिनों में भिन्न भिन्न देशों की सरकारें अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, अपनी सेना की मजबूती के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बहुत लोग हमें चेतावनी देते हैं, युद्ध बहुत जल्द होने वाला है। ये सब बातें हमें याद दिलाती है कि युद्ध एवं लड़ाई बहुत जल्दी होने वाली है। लोग युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं। ये हम सब के लिए डराने वाली बात है। यशया अध्याय 2:6-8। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्वियों के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिस्तियों की नाई टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत है। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से सवारा है, दंडवत करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अन्य जातियां सृष्टिकर्ता की अपेक्षा उसकी सृजित वस्तुओं की उपासना करती है। ये मानववाद का एक सटीक विवरण है। आज के भौतिकवाद का भी ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज मनुष्य की दृष्टि में परमेश्वर से अधिक उसकी अपने हाथों से तैयार की गई वस्तुओं का मूल्य है। वचन आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। यशया अध्याय 2:9-12। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं, इस कारण उनको क्षमा न कर। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। ये घटना कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद की घटनाओं का विवरण है, क्योंकि इस संसार से कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद इस संसार में आर्थिक समृद्धि आएगी। अधर्मी पुरुष के शासन के समय लोग खुशियां मनाएंगे, खुशियों के दिन आ गए, ऐसे गीत गाएंगे, क्योंकि ये अधर्मी पुरुष शांति और आर्थिक समृद्धि की परियोजना लेकर आएगा और वो कलीसिया में आर्थिक समृद्धि को लेकर आएगा। लोग जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, अपना घर, अपनी कार, सब कुछ सुख सुविधा होगी। वो सब सारी चीजें उनको मिलेगी और अचानक ढेर सारे पैसे उनके पास होंगे। रहने के लिए घर की कमी नहीं होगी, बहुत सारे मकान ऐसे ही खाली मिलेंगे। लोगों के पास आवश्यकता से अधिक गाड़ियां होगी। लोग दूसरों की गाड़ियां हड़प लेंगे। लोगों के पास बहुत धन दौलत और पैसा होगा, क्योंकि इन सब चीजों को विश्वासी लोग तब तक छोड़कर चले गए होंगे, परंतु 3.5 साल के बाद परमेश्वर घमंडियों का न्याय करेगा। परमेश्वर इस संसार को अपने न्याय सिंहासन के सामने ले आएगा। यशया अध्याय 2:12 से लेकर 19 तक। सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे, और लेबनोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बासान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहर पनाहों पर, तर्शिश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वो दिन आता है। और मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, और मूर्तें सबकी सब नष्ट हो जाएंगी। और जब यहोवा पृथ्वी को कांपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब 7वीं मुहर खोली गई, तो मनुष्य चट्टानों और पहाड़ों को पुकार उठा कि वे उन पर गिर पड़े और उन्हें मेमने के चेहरे से छिपा ले, क्योंकि उसके प्रकोप का दिन आ गया है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। प्रभु के भय के कारण वे चट्टानों की गुफाओं में और भूमि के कोह में घुस जाएंगे। यशया अध्याय 2:19। और जब यहोवा पृथ्वी को कांपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे। परमेश्वर ने कहा, जब यहोवा पृथ्वी को कांपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। मैं मनुष्य के द्वारा किए गए सब बड़े बड़े काम और शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में मैं तो नहीं रहूंगा। जब धरती हिल जाएगी, ये सब ऊंची ऊंची इमारतें मलबे का ढेर बन जाएगी। यशया अध्याय 2:20-21। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छचुंदरी और चम गीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कांपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। आपने देखा होगा कि भूकंप के भय से मनुष्य घर के बाहर आ जाता है। जब संपूर्ण पृथ्वी हिलेगी, तब भूकंप कैसे भयानक होगा। भूकंप के लगातार आने के कारण मनुष्य घरों में जाने से डरेगा। जब परमेश्वर धरती को बुरी तरह हिलाएगा, वे डर के मारे गुफाओं में छिप जाएंगे। यशया 2:22। सो तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। दूसरे शब्दों में, किसी मनुष्य पर भरोसा न करना, क्योंकि वो भी आपकी तरह सांस ले रहा है। बेहतर होगा कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर पर निर्भर रहें।